समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन। कहते हैं नृत्य सिर्फ मस्ती नहीं, सेहत और खुशी की चाबी भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम नृत्य का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन समर्पित होता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के लिए। ये दिन उन सभी लोगों के लिए है जो नृत्य को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं और इसे एक कला के रूप में सजोते हैं। पूरे आधे घंटे के इस कार्यक्रम में आज हम आपको विभिन्न राज्यों के नृत्य शैली से अवगत कराएंगे और अंत में कुछ जानी मानी शख्सियतों को भी याद करेंगे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर स्वीकार कीजिए फरहत नाज का नमस्कार, और आज मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुज्तबा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार फरहत, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स टू दिस वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ परिक्रमा। एंड यस, टुडे इज ऑफ कोर्स इंटरनेशनल डांस डे, और बहुत से लोगों का पैशन होता है सोशल मीडिया के जरिए, हर कोई अपने चैनल्स भी बनाए हुए हैं, एंड यू नो पीपल आर गेटिंग क्वाइट यू नो अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन एंड अक्लेम। एंड यस, ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट दैट। एंड द सेकंड टॉपिक फॉर आवर डेडलाइन इंडिया इज रिगार्डिंग द वेव्स समिट दैट इज मेकिंग वेव्स इवन बिफोर इट हैज स्टार्टेड। So yes, we'll cover that in detail as well. और हस्बे दस्तूर जो बाकी सब कुछ चीजें तो होती हैं, बिकॉज नाम है शो का परिक्रमा, सो ऑफकोर्स वील डू द परिक्रमा ऑफ द कंट्री, सी वॉट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर पोरिंग इन फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स, ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर। लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फरहत। Prime Minister Narendra Modi says government is modernizing country's education system to meet the needs of the 21st century.
भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और कहा पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला एक दुष्ट देश।
Congress party urges Prime Minister Modi for a special session of parliament in the backdrop of Pahalgam terror attack.
कनाडा में आम चुनाव में लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी की जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी।
And in IPL cricket, Delhi Capitals to face Kolkata Knight Riders in New Delhi this evening. And yes, and now it's time for Dateline India. We have already told you the two topics that we are going to discuss today. We are going to talk about International Dance Day and waves. Yes, as soon as we listen to these beats, अपने आप ही पैर थिरकने लगते हैं, और शायद यही जादू है डांस का एंड म्यूजिक का। Well, International Dance Day is a magnificent celebration of movement, rhythm and cultural diversity. International Dance Day is also known as World Dance Day. It's a worldwide tribute to the rich heritage and artistic power of dance. Celebrated every year on 29th of April, it highlights the vast range of styles and traditions that make dance a compelling form of storytelling and also cultural expression. It recognizes dance as a powerful form of expression that connects people across borders, allowing them to share their stories, emotions and traditions without words.
जी बिल्कुल सायरा, और नृत्य एक कला है, और आज नृत्य दिवस पर आवश्यकता है लोगों को अपने भारतीय संस्कृति को जानने और अपने बच्चों को इसके बारे में बताने की। अपनी परंपरा को समझना और इसे आत्मसात करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और जिस प्रकार हम अपने हर कार्य को बड़ी कर्मठता से करते हैं, उसी कर्मठता से हमें अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाने के लिए करनी होगी शुरुआत।
Absolutely, Farhat. और कितने सारे dance forms हैं, you know, from the very graceful and elegance of ballet to the electrifying energy of hip hop, from classical folk dances to contemporary innovations. Each dance style holds a unique place in history as well as modern culture. This special day reminds the world that dance isn't just an art, it's a universal language that transcends differences and unites hearts. The inception of International Dance Day dates back to the year 1982, when the Dance Committee of the International Theatre Institute, or ITI, in association with UNESCO, established this special day to honour and elevate द परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ डांस. और जो 29 अप्रैल जो डेट चूज की गई, वेल इट कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जॉन जॉर्ज नोवेर, हु वाज अ रेनाउंड फ्रेंच डांसर एंड कोरियोग्राफर वाइडली क्रेडिटेड एज द पायनियर ऑफ मॉडर्न बैले.
जी बिल्कुल सैरो, विभिन्न राज्यों में अगर पारंपरिक नृत्यों की बात की जाए तो उसमें कथकली, मोहिनी अट्टम, उड़ीसी, कथक, भरतनाट्यम जैसे नृत्यों की शैली हमेशा से ही लोगों को प्रभावित करती रही है. और राजस्थान की अगर बात की जाए या फिर बिहार राज्य की, तो कई तरह के डांसर्स विदेश में भी अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन ज्यादा पब्लिसिटी नहीं होने की वजह से ये डांस विधाएं बॉलीवुड की तरह आमजन तक नहीं पहुंच पाती हैं. तो हम भवाई डांस की अगर बात करें राजस्थान की, तो ये लोकप्रिय नृत्यों में से एक माना जाता है. इसके अलावा कच्ची घोड़ी नृत्य केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत के अन्य भागों में भी लोकप्रिय है. और अगर सारा बात की जाए भरतनाट्यम जो है नृत्य की, तो उसमें जो भाव जो होता है वो असल में देखने को मिलता है. yes. तो वो काफी लोकप्रिय होता है. आइए ये भी सुन लेते हैं. और हिंदी फिल्मों में भी सारा नृत्य को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है. माधुरी दीक्षित की अगर बात की जाए तो उसमें अमी जे तो मार जो गीत है वो कितना लोकप्रिय हुआ, उसमें विद्या बालन के साथ जो उनका डांस था वो काफी सराहा गया. तो आइए सुन लेते हैं. और इसके अलावा फिल्म दिल तो है पागल की अगर बात की जाए तो इसमें माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर के बीच का जो डांस ऑफ एनवी था वो भी काफी ग्रेसफुल रहा.
And yes, if we talk about the various regional dance forms of India, I think it's India is home to a vast array of dance traditions, each with its cultural heritage and storytelling style. आपने भरतनाट्यम की तो बात की, लेकिन उससे पहले हमारा कह सकते हैं कि भांगड़ा बज गया था, लेकिन भांगड़े का जिक्र हम लोग अब कर रहे हैं. Yes, we all know that भांगड़ा being one of the most popular, चाहे वो शादी, चाहे आपको भांगड़ा आता ना आता हो, लेकिन जैसे ही आप बीट सुनते हैं आप ऑटोमेटिकली
लगने शुरू हो जाते हैं.
Absolutely. So yes, Bhangra mainly from Punjab, Garba from Gujarat, Lavani of Maharashtra, Bihu of Assam, and of course, how can we forget Kathak from North India, especially jo hamara Awadh hai, Wajid Ali Shah, uske founder kahe jaate hain Kathak ke. So of course, all these dance forms, they give a very beautiful color to our country and enhancing the not just the rhythm but also the emotion and cultural flavor. To the stage.
और अगर बात की जाए उड़ीसा की, तो उत्पन्न उड़ीसी नृत्य अपनी सुंदर मुद्राओं और भावपूर्ण कहानी कहने के लिए जाना जाता है. सोनल मानसिंह एक प्रमुख उड़ीसी नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं, जिन्हें शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है.
Yes, and you mentioned about Bharatanatyam. Bharatanatyam is one of the oldest classical dance forms, and I mentioned Kathak as well. And of course, Wajid Ali Shah, the last king of Awadh, is much credited for, you can say, not just, you know, usko farogh hi nahi diya, balki usko ijaad kiya. Aur Birju Maharaj, who has become the face of present contemporary Kathak, apne sare ancestors jo hai Wajid Ali Shah ko hi thanks karte hain, because he gave a very royal stage and patronized Kathak. And other dance forms, of course, from the northeast, Manipur ka Manipuri, which is the delicate and devotional dance form, which is often associated with tales of Radha and Krishna. And of course, aur bhi bahut sare nritya hai. Mere khayal se aaj ke is chote se segment mein sabka zikr karna bahut mushkil hoga. And yes, we all know that dance has a great impact on not just the society, but on individuals. They are not just merely, you know, a reason for celebration. It is an expression of the human emotions, and it additionally serves as a medium for social change as well. Many artists use dance to address themes such as gender equality, historical narratives, and societal struggles, making it a dynamic force for raising awareness and sparking discussions. Well, Farhat, the second topic, as we have mentioned, that is already making waves even before its inception, is the Wave Summit that is going to be held in Mumbai from 1st to 4th of May. The inaugural World Audiovisual and Entertainment Summit, or WAVES 2025, will start in a few days, that is from 1st of May till 4th of May, at the Jio World Convention Center in Mumbai. It attempts to position India as a global media, entertainment and creative innovation hub.
और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वेव 2025 की मेजबानी करना महाराष्ट्र के लिए एक बहुत गर्व की बात है, और उन्होंने नागरिकों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की भी अपील की है, जो 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा. उन्होंने वेव्स को वैश्विक मंच पर भारत की रचनात्मक उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने का एक बड़ा अवसर बताया. रचनात्मक अर्थव्यवस्था के महत्व और रोजगार और अवसर पैदा करने की इसकी क्षमता पर जोर देते हुए उन्होंने मुंबई को वैश्विक मनोरंजन उद्योग की राजधानी के रूप में स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि की.
Yes.
Aims to leverage India's vibrant talent pool and technological capabilities to build stronger connections with the global economy. With this vision, we are committed to establishing Mumbai as the capital of the global entertainment industry and to provide a world-class platform for artists, creators and innovators.
Yes, Prime Minister Narendra Modi will be inaugurating the event on 1st of May. And if we briefly give a schedule to all our listeners, jo log soch rahe hain Wave Summit attend karne ka, aur jo log already agar Mumbai mein hain, they can probably also benefit. Well, on day one, that is 1st of May, Wave Summit will open with a stirring invocation by M.M. Keeravani and a 30-member orchestra, and Sutradhar Reinvented, which is a sensory-rich journey into India's cinematic and storytelling DNA, narrated by Sharad Kelkar. At 6 p.m. in the evening at the Grand Theatre in NMACC, classical ensemble led by legends like Vishwamohan Bhatt, Y. Venkateshwara Rao and Ronu Mojumdar, and there will also be performances by the Tatsio sisters, Jhala, Shreya Ghoshal, King X, Alan Walker and a cinematic act by Anupam Kher. On day 2, that is 2nd of May, a series of captivating Indian performances including Bhangla, Jabro, Sambalpuri, Chhau, Manipuri and Melakam Nritya alongside acts and also interactive sessions will be held in the evening at the Grand Theatre Maharashtra Ki Lokdhara, featuring Maharashtra's folk heritage, harvest songs by Shantanu Moitra and a grand film musical journey by Shankar Mahadevan is surely going to entice you. On day 3, of course, आप बताइए फरहत के तीसरे दिन क्या होने वाला है.
जी सायरा, ये दिन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों और इंटरेक्टिव सत्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति और कलात्मक भावना का जश्न मनाता है. और 4 मई की अगर बात की जाए तो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के फाइनलिस्ट और विजेता एक गतिशील संगीत शोकेस करेंगे. वहां उस्ताद की शास्त्रीय शैली से लेकर सिम्फनी ऑफ इंडिया के फ्यूजन तक बैटल ऑफ द बैंड्स की ऊर्जा और विद्युतीकरण EDM चैलेंज भी होंगे.
Yes, so I'm sure that logon ko ek khaka to pata hi chal gaya hoga of the schedule at the Wave Summit. So please book your tickets to Mumbai and do attend the Wave Summit. And yes, now it's time to do the parikrama of the country, Farhat. We'll go to different parts and see what's happening. Well, we'll start our journey of parikrama today with down south in Kerala, where Prime Minister Modi is scheduled to dedicate the Vizhinjam International Port to the nation on 2nd of May. It marks the end of decades of long wait for Kerala's biggest dream project. We have a report.
Vizhinjam Port, developed under the public-private partnership mode, stands as one of the largest initiatives in the country's port sector. Vizhinjam's strategic location near international shipping routes significantly reduces transit times for vessels, making it a pivotal point for maritime trade. As one of India's few natural deep water ports, it can efficiently accommodate large cargo and container ships. The development of Vizhinjam International Seaport is poised to boost Kerala's economic growth by creating jobs, enhancing trade and attracting investment. Making the announcement of Prime Minister's inauguration of the port on May 2nd, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan said that Vizhinjam is India's first semi-automated transshipment port, marking Kerala's rise on the global maritime trade map. In July 2024, Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, received the first mothership MV San Fernando, marking the beginning of operation in Vizhinjam. Union Minister said that the project is a testament of the vision of Make in India. Vizhinjam port is set to become a key player in regional trade, potentially serving as a gateway for commerce between Southeast Asia, the Middle East and Africa. Mayusha for Parikrama from Thiruvananthapuram.
और अब बात करते हैं कार्यक्रम मन की बात की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए. ये इस मासिक कार्यक्रम की 121वीं कड़ी रही, जिसके जरिए उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया, युवाओं की भूमिका और विज्ञान में प्रगति समेत ऐप और वैश्विक भारतीयों के लिए संदेश जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. एक रिपोर्ट.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए विभिन्न मुद्दों पर दिल से संवाद किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों की निंदा की और कहा कि निर्दोषों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. इसके बाद प्रधानमंत्री ने इतिहास के गौरवशाली पन्नों की ओर चलते हुए चंपारण सत्याग्रह का जिक्र किया. युवाओं की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने विज्ञान और नवाचार में देश की प्रगति का उल्लेख किया. श्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण नई पहल सचेत ऐप के बारे में भी बताया. ये एप्लीकेशन प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात आदि के दौरान लोगों को समय रहते चेतावनी देगा. इसकी खास बात ये है कि ये जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी जागरूक रह सकेंगे. कुल मिलाकर मन की बात की ये कड़ी प्रेरणा, संकल्प, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रही और सबसे बड़ी बात, उनका संबोधन आज हर भारतीय के मन को छूने वाला रहा. परिक्रमा के लिए श्री विजयपुरम से मैं पूजा सिंह.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. आईपीएल क्रिकेट में नई दिल्ली में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा. ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा. कल राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हरा दिया.
And time now for business news. Well, the benchmark domestic equity indices ended nearly flat in today's volatile session amid mixed global cues. The 30 share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, added 70 points to close at 80,288. The National Stock Exchange, Nifty 50, rose marginally by 7 points to settle at 24,336. In the global crude market, Brent crude was trading over 1.5% down at $64.85 per barrel. In Indian bullion market, 24-carat gold was trading down at 95,580 rupees per 10 grams, while silver 999 fine was trading up at 97,700 rupees per kg.
और अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्म दिवस. इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे.
Today we remember Raja Mahendra Pratap Singh. Raja Mahendra Pratap was born into the ruling family in Hathras in 1886.
In 1914, Raja Mahendra Pratap Singh left his estate to plunge into India's struggle for independence. On the 1st of December 1915, he proclaimed the first provincial government of India outside India at the Baghe Babar in Kabul. He declared himself president and his fiery fellow revolutionary Maulana Barkatullah of Bhopal as Prime Minister of the provincial government.
Raja Mahendra Pratap was also deeply involved with the Swadeshi movement
and would constantly promote small industries with indigenous goods and local artisans. Deeply influenced by the speeches of Dada Bhai Naroji and Bal Gangadhar Tilak, Mahendra Pratap started the movement to burn foreign-made clothes.
Pratap also visited foreign countries in an attempt to obtain support for India in its struggle for freedom. In 1929, Mahendra Pratap launched the World Federation in Berlin. He was nominated for the 1932 Nobel Peace Prize. After almost 32 years in exile, Mahendra Pratap Singh finally returned to India in 1946.
In independent India, he entered Lok Sabha from Mathura in 1957. Raja Mahendra Pratap continued to work for the society till his death on the 29th of April 1979.
We also remember the freedom fighter Gop Bandhu Chowdhury from Odisha. Gop Bandhu Chowdhury was born in Jagat Singhpur. After his education, he joined the British government as a deputy magistrate. After 4 years, he resigned from his post of deputy magistrate and decided to spend the rest of his life in the service of the people. Gop Bandhu Chowdhury started participating in the Gandhian programs.
He became a member of the Odisha Congress Committee and also a permanent member of the Utkal Sammelani. His most significant work in this phase of Gandhian struggle for Swaraj was the establishment of Alak Ashram in Jagat Singhpur in January 1922. He experimented with the Gandhian system of rural reconstruction and education in this ashram.
Gop Bandhu became a famous leader of the civil disobedience movement and Salt Satyagraha. He was arrested by the British administration in April 1930 and was imprisoned till March 1931.
In 1934, Mahatma Gandhi undertook a Padyatra in Odisha. Upon Gandhiji's advice, Gopabandhu set up a base at Bari with his family and a few followers on the 13th of August 1934 and started working for people there. Gopabandhu translated Mahatma Gandhi's biography, My Experiments with Truth, into Odia, Satyara Prayog.
Post-independence, Gopabandhu became associated with the famous Bhudan movement in the 1950s. He breathed his last on the 29th of April 1958 after a long and eventful career of implementing Gandhian programs in rural Odisha.
We also remember the martyr Indrabhushan Rai, born in 1890 in district Khulna, now in Bangladesh. Indrabhushan was a high school student when he threw a bomb on the mayor of Chandranagar in 1908. Later, he became a member of the Manikatola Garden Secret Organization and was convicted and sentenced to 10 years of imprisonment in cellular jail in 1909 for his involvement in the Alipur bomb case. Indrabhushan was tortured so much by the British authorities that he committed suicide inside the jail on the 29th of April 1912.
If we continue the segment in which we remember some important personalities, we are remembering Raja Ravi Verma today on his birth anniversary, a very renowned painter and artist. His works are one of the best examples of the fusion of European academic art with a purely Indian sensibility and iconography. He was especially notable for making affordable lithographs of his paintings available to the public, which greatly enhanced his reach and influence as a painter and public figure. His lithographs increased the involvement of the common man with fine arts and defined artistic taste among the common people. Furthermore, his religious depictions of Hindu deities and works from Indian epic poetry and Puranas have received profound acclaim. He was part of the royal family of erstwhile Parappanad in Malappuram district. Raja Ravi Verma was closely related to the royal family of Travancore of present-day Kerala. Later in his life, two of his granddaughters were adopted into the royal family as well.
और सारा अब हम याद कर रहे हैं दिग्गज तबला वादक अल्लाह रखा को. अल्लाह रखा का जन्म हुआ 29 अप्रैल सन 1919 में और साल 1967 में कैलिफोर्निया के मॉन्टेरे में काउंटी फेयर ग्राउंड में हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई थी और उस समय उन्होंने अपनी स्टेज परफॉर्मेंस दी. इसके अलावा अपनी मेहनत और लगन की वजह से अल्लाह रखा को साल 1940 में एक संगीतकार के रूप में आकाशवाणी में नौकरी मिली. यहाँ एक तबला वादक के रूप में उनकी मुलाकात हुई पंडित रविशंकर से.
Thank you.
साल तक रेडियो में काम किया इन्होंने और इसके बाद अपनी किस्मत आजमाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। अल्लाह रखा ने एआर कुरैशी के साथ मिलकर तकरीबन 30 फिल्मों में काम किया।
Widely revered as one of history's most iconic players of tabla, he was a frequent accompanist of sitar player Pandit Ravi Shankar and was largely responsible for introducing tabla to the Western audience. And as the saying Jee. goes, like father like son, to zahir si baat hai Allah Rakha ne jo ek mayar qayam kiya tha tabla ka, unke bete Zakir Hussain ne usko mere khayal se aur aage hi badhaya. And when Zakir Hussain passed away recently, Farhat, all through social media we get all these clips, you know. So in one such interview Zakir Hussain, he mentioned that ek you know Muslim gharon mein ek pratha hoti ki jaise hi bachcha paida hota hai to kuch Quran ke verses kaan mein kahe jate hain. To jab Zakir Hussain paida hue to aur unke father yani Allah Rakha ko diya gaya to Allah Rakha ne taal unke kaan mein sunayi. To jab unki wife ne pucha what is this, to he said ki meri aradhana, meri pooja, sab kuch yahi hai. So I think that's a beautiful way that an art is everything to an artist.
जी सर, और आज जन्मदिन है रामानंद सागर की। रामायण में सीता के किरदार से हर भारतीय के दिल पर गहरी छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया का एक वक्त था जब लोगों ने उन्हें सीता के रूप में अपने दिल में उतार लिया था और जहां भी वो जाती लोग उनके पैर छूने लगते। दीपिका एक साक्षात्कार में खुद बताती हैं कि रामायण से पहले भी वो सागर आर्ट्स के साथ काम कर चुकी थी और उस समय उनकी उम्र केवल 18 साल थी और उस समय रामायण के लिए स्क्रीन टेस्ट हो रहे थे, तब उनसे स्क्रीन टेस्ट देने के लिए दोबारा कहा गया। दीपिका बताती हैं कि रामानंद सागर ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट देने के लिए खुद कहा था। और दीपिका ने यह भी बताया कि रामानंद सागर पहले से जानते थे कि वो इस रोल के लिए परफेक्ट हैं, फिर भी उन्होंने स्क्रीन टेस्ट लिया क्योंकि वो हर चीज में परफेक्शन चाहते थे। तो आइए सुन लेते हैं उनका ये डायलॉग।
मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।
वैभव शक्ति संपत्ति के मोह में आकर जो स्त्री अपना पतिव्रत धर्म भूल जाए, उससे अधम और कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए वो मेरे बनवासी वीरहीन तीनों लोकों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। उस महान पुरुष सिंह के सामने तुम मुझे एक कायर तुच्छ सिंगल लेते हो, जो चोरों की भांति आकर एक असहाय अबला को छल से उठा ले गए। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे ऐश्वर्य और वैभव पर, तुम्हें जन्म देने वाली माता पर, तुम्हारे पूर्वजों पर, तुम्हारे कुल पर धिक्कार है। एक बार नहीं, हजार बार धिक्कार है।
सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरुपति मन भावन।
और अब हम याद कर रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान को। हिंदी के साथ ही उन्होंने कई अंग्रेजी फिल्मों में भी अभिनय किया। इरफान खान के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी आंखों से ही सारा अभिनय कर देते थे और उनकी फिल्में द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेमसेक, रोग जैसी फिल्मों से उन्होंने अभिनय का लोहा मनवाया। हासिल फिल्म के लिए उन्हें वर्ष 2004 का फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की फिल्म से उनका ये डायलॉग।
लकीरें बहुत अजीब होती हैं, खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं।
We are also remembering Kedarnath Sharma today on his death anniversary, a director, producer, screenwriter and lyricist predominantly in Hindi cinema. While he had great success as a director of movies including Neel Kamal, Bhavre Nain and Jogan, he is most remembered for starting the acting careers of popular actors like Madhubala, Geeta Bali, Raj Kapoor, Mala Sinha, Bharat Bhushan and Tanuja.
और केदार ने बच्चों की फिल्म समाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केदार ने अपने करियर में पहली बार दिल ही तो है का निर्देशन किया। उनकी ये फिल्म 1949 में रिलीज हुई। इसके बाद उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म चित्रलेखा साल 1941 में रिलीज हुई थी। तो आइए सुन लेते हैं उनके द्वारा लिखा गया ये खूबसूरत सा गीत।
बिजली का
कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी। और इसके साथ ही वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in। इसके साथ ही फरहत और सायरा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।